अध्याय दो। खड़ी बोली का आरंभिक गद्य। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व गांव और नगर सामान्यतः अलग अलग स्वतंत्र इकाइयां थी। उनके निवासियों को वस्तु विनिमय के लिए प्रायः बाहर नहीं जाना पड़ता था, किंतु पुरानी अर्थव्यवस्था के टूटने और यातायात के नए साधनों के उपलब्ध होने पर लोगों को जीविका अथवा वस्तु विनिमय के लिए बाहर जाना पड़ा। इस तरह देश धीरे धीरे आर्थिक एक सूत्रता में बंधता गया। पारस्परिक संपर्क तथा भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सामान्य भाषा का होना जरूरी था। यह भाषा हिंदी या हिंदुस्तानी ही हो सकती थी। इसका तात्पर्य यह नहीं कि नई अर्थव्यवस्था में इस भाषा को जन्म दिया। भाषा का जन्म इस प्रकार नहीं हुआ करता। कोई बुनियादी बोली अनेक ऐतिहासिक कारणों से विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। नई अर्थव्यवस्था ने दिल्ली मेरठ की बोली को संपर्क भाषा के रूप में विकसित होने की सहायता पहुंचाई। दिल्ली मेरठ के आसपास की भाषा, जिसे अमीर खुसरो और अबुल फजल ने देहलवी कहा है, हिंदी ही है। हिंदी, हिंदवी, रेखता, खड़ी बोली। हिंदी शब्द का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, इसके संबंध में सुनिश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है, पर इतना सच है कि हिंद, हिंदू, हिंदी शब्द का प्रयोग पहले पहल मुसलमानों ने किया। ईरानी सम्राट दारा के अभिलेख में हिंदू शब्द भारत के लिए आया है। अन के ऊ के लोप होने पर हिंदू का हिंद हो गया। हिंद में ईरानी के विशेष बोधक प्रत्यय इक के जुड़ जाने ने हिंदी हुआ। क के लोप होने पर हिंदी हो गई। हिंदी का तात्पर्य था भारत। यहाँ की भाषा को जबाने हिंदी कहा जाता रहा है। नौशेरवा 531 से 579 ईस्वी के समय में बजरोया ने पंचतंत्र का जो अनुवाद किया है, उसकी भूमिका ने इसे जबाने हिंदी से अनुदित किया बताया गया है। स्पष्ट है कि उस समय भी हिंदी का अभिप्राय भारत से था। खुसरो की खालिक बारी अप्रामाणिक रचना है। अन्य स्थलों में हिंदी से उसका अभिप्राय भारतीय से है। भाषा के अर्थ में उसने हिंदवी पर हिंदुई का प्रयोग किया है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोए जवाब। हिंदवी या हिंदुई का प्रयोग मध्य देश की भाषा के लिए किया गया। हिंदवी भी सौरसेनी अभ्रंश से निकली थी। भाषा उपनिषद गोरा बादल की बात, रानी केतकी की कहानी, खड़ी बोली को उनके कर्ताओं ने हिंदवी कहा है। मध्य देश की भाषा यहाँ के लोग भाषा कहते थे। कबीर, जैसी, तुलसी, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का ही प्रयोग किया। हिंदवी और भाषा दोनों समानार्थक थे। हिंदवी का प्रयोग विदेशी मुसलमानों ने किया और भाषा का प्रयोग यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने। चंद्रबली पांडे ने हिंदवी को मुसलमानों की भाषा माना है, पर यह भ्रम केवल इसलिए हुआ कि हिंदवी का भाषा के अर्थ में प्रयोग केवल मुसलमानों ने किया है, किंतु हिंदवी भाषा की ही थी, साहित्यिक भाषा। खुसरो ने अपने ग्रंथ नुहे सिपर में उस समय की 11 भाषाओं का उल्लेख किया है जिनमें हिंदवी का नाम नहीं है, देहलवी का है। अनुमान लगाया जाता है कि देहलवी बोलचाल की भाषा थी और हिंदवी साहित्य की। अबुल फजल की आईने अकबरी में भी देहलवी का उल्लेख मिलता है। यह देहलवी ही दक्षिण में 15वीं शताब्दी ईस्वी दक्षिण हिंदी के नाम से विख्यात हुई। शाही मीरा जी 1475 ईस्वी, शाह बुरहानुद्दीन 1582 ईस्वी, मुल्ला वजही 1635 ईस्वी आदि ने देहलवी को हिंदी बोल, हिंदी जबा कहा है। इसी समय ने हिंदी शब्द प्रयोग की अखंड परंपरा चलती है। सन 1723 ईस्वी में सूफी कवि नूर मोहम्मद लिखता है, हिंदू मग पर पाव न राख्यो, काजो बहुत हिंदी भाख्यो। लगता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह शब्द हिंदुओं में भी प्रचलित हो गया था। इसी शताब्दी में नासिक, सौदा और मीर ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने अपने खतों में उर्दू, हिंदी, रेखता को कई स्थलों पर एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी अध्यापक गिलक्राइस्ट हिंदी, हिंदुस्तानी, उर्दू और रेखता आदि को समानार्थी समझते थे। इससे जाहिर है कि हिंदी उस भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा था जो अरबी फारसी बहुत बहुल होती जा रही थी। गिलक्राइस्ट ने हिंदी व्याकरण कवानिन सर्फ वे न हो हिंदी को इसके प्रमाण में पेश किया जा सकता है, किंतु अरबी फारसी प्रधान हिंदी जनता की भाषा कभी भी नहीं रही। 1812 ईस्वी में कैप्टन टेलर ने फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण में लिखा है, मैं केवल हिंदुस्तानी या रेखता का जिक्र कर रहा हूँ जो फारसी लिपि में लिखी जाती है। मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता, और मुसलमानी आक्रमणों के पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी, पश्चिमोत्तर प्रांत की यही भाषा धीरे धीरे हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। पहले ही कहा जा चुका है कि हिंदी शब्द का प्रयोग उत्तर भारत के लिए किया जाता है जा रहा है, इसलिए इस विशाल प्रदेश की भाषाओं को हिंदी कहा जाने लगा। ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि का अंतर्भाव इसी में हो जाता है, किंतु भाषा शास्त्रियों की दृष्टि में केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा खड़ी बोली और ब्रजभाषा और उनकी बोलियां ही हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ग्रियर्सन ने राजस्थानी को गुजराती के अंतर्गत माना है, पर राजस्थानी की टूंठा, हाड़ी और मेवाती गुजराती की अपेक्षा हिंदी के निकट है। मैथिली और भोजपुरी को भी हिंदी से अलग स्वतंत्र माना जाने लगा। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें अंतर अवश्य है, किंतु ये हिंदी परिवार की ही भाषाएं हैं। उनका साहित्य हिंदी के अंतर्गत माना जाता है। पठन पाठन की दृष्टि से इन सभी भाषाओं के साहित्य को हिंदी ही माना जाता रहा है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में सभी का समावेश होता रहा है, किंतु आधुनिक युग में खड़ी बोली साहित्य की भाषा बनी। पद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली साथ साथ ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी और मैथिली में रचनाएं होती रही हैं। वास्तविकता तो यह है कि परिनिष्ठित काव्य इन्हीं में लिखे गए, पर गद्य का विकास खड़ी बोली में ही हुआ। जो कुछ गद्य ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली में मिलता है वह अव्यवस्थित लचर और कंतभूति अनुवाद है, इसलिए जहाँ तक गद्य का संबंध है साहित्य के इतिहास में इनका कोई स्थान नहीं है। नाथ, सिद्ध और निरंजनी संप्रदाय का गद्य खड़ी बोली में साहित्य की रचना 13वीं शताब्दी में शुरू हुई, पर इसका पूर्वाभास 8वीं 9वीं शताब्दी की भाषा में मिलने लगता है। उद्योतन सूरी रचित कुबलय माला कथा 778 ईस्वी में एक हाट प्रसंग का उल्लेख मिलता है, उसमें एक मध्यदेशीय वड़ी के मुख से सुने हुए मेरे तेरे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे पता लगता है कि खड़ी बोली मध्य प्रदेश की बोली है। इसके अतिरिक्त इसमें पूछा, अल्लया, तुझे ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हैं जिन्हें खड़ी बोली शैली का कहा जा सकता है। वस्तुतः 16वीं शताब्दी तक खड़ी बोली गद्य परंपरा का कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिलता। प्रोफेसर हामिद हसन कादरी ने उर्दू साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी के किसी ख्वाजा सैयद अशरफ जहांगीर समनीनी की सूफी मत विषयक रचना का उल्लेख किया है, किंतु इसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं है। नाथ सिद्धों की कुछ ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी और पूर्वी के मेल के साथ खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है, किंतु ये रचनाएं 17वीं 18वीं शताब्दी की हैं। दक्षिणी हिंदी के प्रामाणिक नमूने भी 16वीं शताब्दी के पहले के नहीं मिलते। नाथ सिद्धों और निरंजनी संप्रदाय के साधुओं की प्राप्त गद्य रचनाओं में गेसोस गोसठ, गोरख गणेश गुष्टी, महोदय गोरस गुष्टी, गोरक्षा सतम टिप्पण, अभय मात्रा जोग, रामावली, गोरखनाथ के 27 पदों का तिलक, योगाभ्यास, मुद्रा टिप्पण, पर्वत सिद्ध का कहया और भोगुल पुराण का विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये 17वीं शताब्दी की उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। गणेश गोसठ या गोरस गणेश गुष्टी की प्रतिलिपियां बड़थ्यवाल जी को प्राप्त हुई थी, उनके आधार पर उन्होंने इसका पाठ शोधन कर गोरखवाणी के परिशिष्ट में प्रकाशित किया था। यह 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की रचनाएं ज्ञात होती हैं, क्योंकि इसमें प्रतिलिपि संवत 1715 लिखा गया, प्रतिलिपि संख्या 1715 लिखा गया। भाषा का नमूना निम्नलिखित है, गेड़ेस बुज गोरस कहे, स्वामी जी तुम का हाथ तक त आया, कहा तुम्हारा नाव, अवधु हम निरत्ततम आया, जोगी है मारा नाव, स्वामी जी जोगी ते तो कुन बोलीवे, जिन येता मेर भेसला रचिया, तुम कून गरु न चेलो, अमे अवधु निरंजन जोगी, अति गुरु न चेला। इसमें अपभ्रंश का द्वित्व व्यंजन नहीं है, अपभ्रंश के घेरे से भाषा निकल चुकी है, पर पुराने ढंग के तुम्हारा, अमे अमे, तुम मारा, कून आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसमें खड़ी बोली के शब्द रूप और शैली दोनों हैं। आया, रचिया तो आदि को उदाहरणार्थ पेश किया जा सकता है। खड़ी बोली का उकारांत भी यहाँ मौजूद है। महादेव, गोरस, गुष्टि, अभय, मात्रा, जोग आदि में भी खड़ी बोली के शब्दों और शैली को देखा जा सकता है। नाद सिद्धों की बानियां, पुस्तक के परिशिष्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्री पर्वत सिद्ध का कहिया भूगोल पुराण नामक गद्य रचना संकलित की है। इसकी भाषा को उन्होंने काफी पुराना बताया है। नमूना निम्नलिखित है। सुमेरु पर्वत ऊपरी चारी दिशा पुरिया है ना, कौड़ू पुरी कौड़ू कौड़ू दिशा है, पूर्व दिशा आगे ऊपरी पृथ्वी ऊपरी 24,000 जोजन अमृत पूरी ऊंची है, ताहा राजा इंद्रराज करता है, 33 कोटि देवते हैं, 88,000 सहस्र भूपी सूर हैं, दक्षिण दिशा आगे पृथ्वी ऊपरी 25,000 जोजन जमपुरी ऊंची है। दक्षिणी हिंदी, 14वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी। इसके साथ दिल्ली के बहुत से लोग दक्षिण पहुंचे। दौलताबाद से राजधानी पुनः दिल्ली आ गई, लेकिन जो लोग दिल्ली छोड़कर दौलताबाद बस गए थे उनमें से अधिकांश नहीं लौटे। इन दिल्ली निवासियों ने बहमनी राज्य की नींव डाली। उत्तर भारत बहुत कुछ अरबी फारसी से प्रभावित था, लेकिन इस भूभाग में उत्तर के प्रभाव से मुक्त आर्य भाषा को विकसित होने का अच्छा अवसर मिला। तारीखे फरिश्ता के अनुसार बहमनी राज्य का कार्य हिंद में होता था। बहमनी राज्य की राजभाषा हिंदी थी या नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, किंतु वहाँ के मुसलमानों की भाषा हिंदी थी, यह असंदिग्ध है। ख्वाजा बंदानवाज गेसुदराज 1322 से 1427 ईस्वी सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के खलीफा ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी के शिष्य थे। वे सामान्य जनता के लिए अपने विचार हिंदी में प्रकट किया करते थे। एक दूसरे सूफी शाह मीरान ने अपनी भाषा को स्वयं हिंदी कहा है। उन्होंने लिखा है, हामी बोल अरबी करे और फारसी बहुतेरे, यो हिंदवी बोली तब इस अर्थ में भावे सब, यह भाखा भले सो बोले पून इसका भाव खोले, वे अरबी बोल न जाने न फारसी पछाने। गेसुदराज की गद्य रचनाओं में मेरा जुल आसिकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। संभवतः उनके शिष्यों द्वारा इसमें अन्य उनके उपदेश संग्रहित हैं। भाषा का नमूना निम्नलिखित है। इसका माना तह कि खुदा मिन्नत किया है, मुसलमानों होर मुसलमाना की औरता, तुम्हारे तना में मोहम्मद का नूर राखिया हूँ, मो तुमी बुझो होर जानो हरेक पराई, बद्यांत करना आजीब है, ए बड़ी न्यामत है। इसमें उत्तरी हिंदुस्तानी की प्रवृत्ति अधिक है, दक्षिणी का प्रभाव न्यून है, किंतु भाषा का जो रूप इस पुस्तक में मिलता है वह 14वीं-15वीं शताब्दी दक्षिणी का नहीं है। लगता है लिपिकों ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। दक्षिणी हिंदी गद्य की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना बजही की सबरस है। यह मसनवी शैली में लिखी हुई सूफी प्रेम कथा है। इसका गद्य भी वृत्त गंधी है, वाक्य छोटे छोटे और शब्द अश्लिष्ट हैं। लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अरबी फारसी भी बहुतायत से प्रयुक्त हुए हैं। न आफत देखे न जलजला, आपे भले तो आलम भला, किसी को बुरा बोलना यो बसवास है, भलाई बुराई सब आपने पीस है, आपे चलनी जानते दूसरिया, पर बुरा मानते अव्वल अपनी खबर में, आपे रहना पीछे दूसरिया, कु बुरा कहना जिसे आपस को पछानिया, उसे सब जानिया, जिधर ढलना है उधर अक्ल के उजाले में चलना है। उत्तर भारत में खड़ी बोली। दक्षिणी हिंदी उत्तर भारत की हिंदी से कुछ इतनी दूर थी कि एक का प्रभाव दूसरे पर पढ़ ही नहीं सकता था। यहाँ पर दक्षिणी हिंदी के उल्लेख का मतलब था खड़ी बोली की प्राचीनता दिखाना और उसके विकास के चरणों को रेखांकित करना। उत्तर भारत में खड़ी बोली अपने ढंग से विकसित हो रही थी, किंतु आचार्य शुक्ल ने अकबर के समय की एक रचना गंग कवि की चंद छंद वर्णन की महिमा का जो उल्लेख किया है वह अप्रामाणिक है। अतः उसकी भाषा के आधार पर शुक्ल जी का यह निष्कर्ष निकालना कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी उचित नहीं है। वस्तुतः यह जाली ग्रंथ है। यह पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने की दृष्टि से आविष्कृत किया गया कथा वस्तु और ऐतिह्य के आधार पर इसकी अप्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। अकबरी दरबार का जो वर्णन इसमें आया है वह जादूगर की करामात से कम नहीं है। जिस समय इस ग्रंथ के अनुसार गंग कवि अकबर को रासो की कथा सुना रहा था उस समय अकबर को नूरवादीन कहकर संबोधित करना ऐतिहासिक असंगति है। नूरुद्दीन जहांगीर का नाम था, अकबर का नहीं, इसलिए इसकी रचना जहांगीर के बाद उस समय लोगों को बादशाह की उपाधियां भूल गई होंगी। यूं इसकी भाषा का जो उदाहरण शुक्ल जी ने दिया वह 18वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं हो सकता। शुक्ल जी ने रामप्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ को बहुत साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा हुआ बताया है। इसके सुधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। इनके ग्रंथ को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदा सुख लाल और लल्लूलाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहित होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है, किंतु नई खोजों के फलस्वरूप भाषा योग वशिष्ठ न तो साधु निरंजनी द्वारा लिखा गया और न कथा के रूप में पटियाला नरेश की दो विधवा बहनों को सुनाया गया। योग वशिष्ठ की गुरुमुखी की प्रतियों में रामप्रसाद निरंजनी का नाम भी नहीं आया है। नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण के अनुसार भाषा योग वशिष्ठ की प्राचीनतम प्रतियां संवत 1761 ईस्वी की हैं, किंतु इससे प्राचीनतर प्रतियां गुरुमुखी लिपि में मौजूद हैं। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर और महाराज पटियाला के निजी पुस्तकालय में उन्हें देखा जा सकता है। पटियाला दरबार की प्रति संवत 1802 से 1745 ईस्वी की है। इनमें राम प्रसाद निरंजनी का नाम नहीं है। योग वशिष्ठ के नागरी संस्करणों में जो भूमिका दी गई है वह सिखों के सेवा पंथ से संबद्ध ग्रंथ संत रतन पाल में दी गई एक अनुश्रुति से मिलती जुलती है, किंतु उसमें भी साधु निरंजनी का नाम नहीं मिलता। सेवा पंथ में योग वशिष्ठ का बहुत आदर रहा है। वसी सट की पोथी, कथा वसी सट जी की आदि कई नामों से उक्त पंथ में उसका प्रचार रहा है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में भाषा योग वशिष्ठ से जो उद्धरण दिए हैं उनके समानांतर उद्धरण गुरुमुखी संस्करणों तथा हस्तलिखित प्रतियों में मिल जाते हैं। शुक्ल जी द्वारा उद्धरित अवतरण में सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संकलित प्रति के अवतरण का मिलान कीजिए। प्रथम परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिति होते हैं। XXX जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व आनंदमय है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसे दूर करने के लिए के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रमाण करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया कि हे भगवान, आप सब तत्वों का कारण कर्म है कि ज्ञान है अथवा दोनों है, समझाए के कहो। इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्रह्म राम, केवल धर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है, मोक्ष दोनों से होता है। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं होता, और अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। सतीचित अनिद रूप जो आत्मा है तिसको नमस्कार है। कैसा है चित आनंद रूप आत्मा सो कहता है, जिस ते एहू सरन भासते हैं अरु जिस विषय एहू सरब लीन होते हैं, अरु जिस विषय सरब स्थित हैं। इस सती आत्मा का नामस्कारु है। ज्ञाता ज्ञान गेई प्रिसटा दर्शन दिस कर्ता करण क्रिया जिसु करि सिंधु होते हैं। ऐसा जो ज्ञान रूप जो आत्मा है तिसको नमस्कारु है। अगस्तो उवाच हे ब्राह्मण केवल कर्म मोक्ष का कारण नहीं और केवल ज्ञान ते भी मोक्ष नहीं प्राप्त होता दोनों करी मोक्ष की प्राप्त होती है। कर्मांकरण अंतःकरण शुद्ध होता है मोक्ष नहीं होती और अंतहीकरण शुद्ध होए बिना केवल ज्ञान से भी मुक्त नहीं होती। अरथु एहु जो शास्त्रहु का तात्परज ज्ञान निसाहा अंतःकरण शुद्ध होए बिना स्थित नहीं होती ताम ते दोनहु कर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। सिख रेफरेंस लाइब्रेरी अमृतसर में संग्रहित योग भाषा योग वशिष्ठ प्रतिलिपि काल संवत 1923। दोनों उद्धकरणों की भाषा का तुलनात्मक अध्ययन सिद्ध करता है कि दूसरे उदाहरण की भाषा प्राचीन और पहले की अर्वाचीन है। अपभ्रंश की उकार बहुला प्रवृत्ति नमस्कारु एहु जीसु शास्त्रहु आदि में देखी जा सकती है। गुरुमुखी प्रति में शब्द अश्लिष्ट हैं। तत्सम शब्दों के स्थान पर अर्ध तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे आत्मा के स्थान पर आत्मा स्थित की जगह स्थित ज्ञान की जगह ज्ञान आदि। गुरुमुखी के वाक्य सामान्यतः एक ही क्रिया पर आश्रित हैं जबकि शुक्ल जी वाले संस्करण के वाक्य लंबे जटिल और कई सहायक क्रियाओं से युक्त हैं। शुक्ल जी के अवतरण में शब्द रूपों का प्रयोग किसी अभिचारित नियम के अनुकूल नहीं है। कभी तो वहाँ संदेह पैदा होता है तो कभी उसको दूर करने के कारण लिए नहीं सुतीक्ष्ण प्रणाम करके बैठे और प्रश्न किया जैसे अप्रयुक्त एवं व्याकरण विरुद्ध प्रयोग मिलते हैं तो कभी जानन हारे समझाए के आदि पूर्वी प्रयोग बिना सामंजस्य और अनुपात के वहाँ भरे गए हैं। इसके विपरीत गुरुमुखी प्रतियों के गद्य में शब्द रूपों की अव्यभिचारित एक रूपता वर्तनी में पर्याप्त समानता वाक्य विन्यास में निरपवाद रूप से सरलता और सहजता प्रायः सर्वत्र उपलब्ध है। योग वशिष्ठ भाषा का जो रूप इसमें उपलब्ध है वह आश्चर्यजनक रूप से दक्षिणी हिंदी से मिलता है। फर्क यह है कि दक्षिणी हिंदी में अरबी फारसी शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है किंतु योग वशिष्ठ भाषा में इनका स्पर्श नहीं हुआ है। इसे खड़ी बोली की दीर्घ परंपरा की अगली कड़ी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सन 1766 संवत 1823 में दौलतराम जैन ने पद्म पुराण वचनिका लिखी। यह जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद है। इसमें वैराग्यमूलक दृश्यों और कथाओं का चित्रण किया गया है। इसमें जैन पद्धति में रामकथा वर्णित है। भाषा का नमूना है कैसे है श्री राम लक्ष्मी कर अलिंगित है हृदय जिनका और प्रफुल्लित है मुख रूपी कमल जिनका महापुण्याधिकारी है महाबुद्धिमान है गुणन के मंदर उदार है चरित्र जिनका जिनका चरित्र केवल ज्ञान के ही गम्य है ऐसे जो श्री रामचंद्र उनका चरित्र श्री गदाधर देव ही किंचित मात्र कहने को समर्थ हैं।